ओम शांति। संध्या की इस सुनहरी बेला में आज जादू की छड़ी बाबा है, ये विशेष अनुभव ही नहीं लेकिन साथ साथ दिल की गहराई में हम कैसे बाबा को बिठा दें, इस विषय को लेकर के आदरणीय राजू भाई जी हम सबके बीच हैं। एक हाथ की ताली से हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय राजू भाई की यज्ञ में एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि मुरलियों का बहुत सुंदर तरीके से और बहुत गहन रीति से आपका अध्ययन है, अध्ययन ही आपके शौक का विषय रहा है। और केवल मुरलियां पढ़ना ही नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों को आत्मसात आपके जीवन के द्वारा दिखाई देता है। बाबा की एक एक बात को यज्ञ प्रति की अपनी वफादारी, यज्ञ में जो भी कार्य आपको सौंपा गया है उसे पूरी सिंसियरिटी से निभाकर वो कार्य में चार चांद लगा देना, वो कार्य में नवीनता ला देना और वो कार्य की शोभा या वैल्यू बढ़ा देना ही आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। आज हम सबके लिए ये बहुत अच्छा भाग्य है। कल आप सेवा के लिए बाहर जा रहे हैं, आज हम सबको ये सौभाग्य मिल गया है कि हम आपके जीवन की ऐसी विशेष अनुभव भी सुने और इतने ज्ञान रत्नों के बीच से कैसे हम इस जादुई छड़ी का उपयोग करके जीवन में जहां जहां हम रुकते हैं और रुकावटें हैं उसे खत्म करके उड़ता पंछी बने, इस विषय पर आप हमें मार्ग प्रदर्शन करेंगे आदरणीय राजू भाई।
ओम शांति। हम सब बाबा के स्नेह में समाये हुए, बहुत स्नेही बच्चे जिनके नैनों में बाबा बसता है, दिल में बाबा बसता है और बाबा ही संगम युग पर जिनका साथी है, उनके लिए कोई भी बात असंभव है ही नहीं। सहज योग का आधार है दिल से कहो मेरा बाबा, कहते हैं सभी दिल से मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा कहते ही बुद्धि कहाँ चली जाती है, कहाँ। हमारे दोनों बाबा, एक निराकार शिव बाबा सर्वात्माओं का पिता, परमधाम निवासी, और दूसरा बाबा इस समय सूक्ष्म तनवासी आदि पिता, एक परम पिता, एक आदि पिता, प्रजा पिता। तो जब हम बाबा दिल से कहते हैं तो ये बाबा शब्द लिफ्ट का काम करता है, अपने आप इस साकारी दुनिया से, इस देह और देह की दुनिया से पार ले जाता है, चले जाते हैं अपने घर में, क्योंकि जहां जो है उससे मिलना है उसको बाबा कह रहे हैं। तो बुद्धि योग घर की तरफ एक सेकंड में पहुंच जाता है, टाइम नहीं लगता है। लगता है मेरा बाबा कहो, देखो अनुभव करके कहो मेरा बाबा, अनुभव से कहो मेरा बाबा, जाती है बुद्धि ऊपर तक। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में मेरा बाबा कहते बुद्धि एक सेकंड में वहां पहुंच जाती है, उसके लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं है। फास्ट गति है, बहुत फास्ट, रॉकेट भी इसके भेंट में क्या है। इसमें न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर की जरूरत है, एक सेकंड में मेरा बाबा कहा और सूक्ष्म वतन और मूल वतन में पहुंच गए। और बाबा है कौन, परिचय सहित हम बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कहते, अंधश्रद्धा से नहीं कहते। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली चल रही थी भक्ति मार्ग में, भगवान के नाम से काम होते हैं, नाम ले लो काम हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। तो जब भक्ति के अंदर नाम से काम हो रहा है संगम युग पर, तो सब संबंध हमारे बाबा से हैं। जब चाहिए हम बाबा को यूज कर सकते हैं, करते ही हैं, किसको यूज करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ साथ रहता है खुदा, हमसे जुदा नहीं। भक्ति मार्ग में उसको सर्वव्यापी कहा है, संगम युग पर हम सब कहते हैं वो हमारा साथी है, कंबाइंड है। कैसे कंबाइंड है, स्थूल शरीर तो उसको है नहीं, देह तो है नहीं, हम हैं देह अभिमान वाले देहधारी, और बाबा है विदेही निराकार। तो उसके साथ कंबाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस देह से न्यारा रहना पड़ेगा, एक लाइट माइट स्वरूप में रहना पड़ेगा। तो जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति, एक लाइट हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, तो बाबा तक बुद्धि फट से चली जाती है और बाबा आकर के कंबाइंड हो जाता है, लाइट लाइट में कंबाइंड हो जाती है, शरीर के साथ कंबाइंड नहीं होता। अगर कोई जरा भी बोझ वाला है, भारी है, चिंतन भारी बनाता है, कोई भी व्यर्थ चिंतन, कोई पास्ट का चिंतन, कोई ऐसे भी कर्मों का चिंतन आप करते रहो, कोई जवाबदारियों का चिंतन लेकर के योग करो, क्या होगा, बाबा साथ का अनुभव कराएगा, जादू का काम होगा। इसलिए अगर बाबा को सचमुच जादू की तरह यूज करना है, छड़ी है वो जादू की, ऐसे घुमा दो, क्या परियां के पास छड़ी होती थी, कहते हैं वो ऐसे घुमा देती थी तो कुछ से कुछ बना देती थी, जादू की छड़ी। तो बाबा शब्द ही हम सबके पास ऐसा है जो जादू की छड़ी का काम करता है, लेकिन जरूरत है हमको अपने स्वस्वरूप में स्थित रहने की। आत्मा समझ करके अगर दिल से बाबा कहेंगे तो बाबा कंबाइंड हो जाएगा और सब काम असंभव भी संभव हो जाएंगे। इसलिए बाबा हम सबको ये बात बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे जब बाबा कहते हो तो यथार्थ परिचय से कहना, ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल बाबाएं तो बहुत हो गए, कितने देहधारी बाबा हैं, कितने गुरु हैं, कितने महात्माएं हैं जिनको बाबा शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन जब हमारे दिल से निकलता है बाबा, तो वो कौन है जो सर्व आत्माओं का पिता है, कल्याणकारी है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, दाता है, विधाता है, भाग्य विधाता है, परिचय सहित संबंध सहित जब बाबा शब्द मुख से निकलता है तो वो शक्तियां अपने आप इमर्ज हो जाती है। कोई भी शक्ति की जरूरत है, मान लो आज शांति की जरूरत है, किसी को कहते शांति के सागर बाबा को याद करो, शांति का सागर हमारा बाप है, हम अशांत कैसे हो सकते, वो प्यार का सागर बाबा है, हम प्रेम के भूखे कैसे रह सकते, सुख का सागर बाबा है, हम दुखी कैसे हो सकते। अगर सचमुच हम उसके बालक हैं तो बाबा कहता है बालक ही मालिक है, बालक ही मालिक है। तो हम बालक हैं, इस स्मृति से बाबा को बाबा कहो, बाबा आप हमारे बाबा हो। तो दिल से बाबा कहा और मालिक बन करके अधिकार ले लिया। बाबा को तीन शब्द बड़े अच्छे लगते, मुरली के अंदर आप बार बार सुनेंगे, रोज ही वो शब्द रिपीट करते हैं। कौन से तीन शब्द ऐसे हैं जो बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, बोलो। नहीं, ये शब्द नहीं, दूसरे शब्द मैं सुनाता हूं। बाबा को एक शब्द बहुत अच्छा लगता, एक अकेला रहता है ना, इसलिए अकेले है तो एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, एक वृत्ता, एक बाबा, दूसरा न कोई, एक नामी, इकोनॉमी, एकांत प्रिय, एकाग्रचित, एक मत, एक रस, जिसके साथ एक शब्द है ना, एक, वो बाबा को बहुत प्यारा लगता है। और अगर ऐसे इस एक शब्द के आधार से हम चलते हैं, माना एकांत प्रिय हैं, एकांतवासी हैं, एकाग्रचित हैं, एक मत होकर के रहते हैं, एक रस स्थिति में रहते हैं, एक बाबा के सिवा कोई देहधारी अपना नहीं है, एक वृत्ता है, और जो कुछ बाबा ने दिया है उसको इकोनॉमी से यूज करते हैं, तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, एक वृत्ता बन जाते हैं, एक शब्द बाबा को इतना प्यारा है। ऐसे बच्चे अगर दिल से कहेंगे बाबा, तो फट से बाबा हाजिर हो जाए, उनके लिए वो जादू का छड़ी बन जाएगा। और ऐसे ही कहते रहो, दूसरी दूसरी बातें कई ऐसे हैं, जब समय आता तो बाबा बाबा करेंगे, और जब वो समय बीत जाता है तो देहधारियों से संबंध बना के रखेंगे, फिर बाबा देखता है तो स्वार्थ से याद करता है, जब समय आता है स्वार्थ होता है तो बाबा कहता है, बाकी समय तो देहधारियों में फंसा हुआ, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, जहां मेरे मेरे का विस्तार है वहां बाबा किनारा कर लेता है, ये मेरे मेरे में फंसा हुआ है, मैं में फंसा हुआ है, जब मैं कहो तो आत्मा, मेरा कहो तो मेरा बाबा, मैं कहते ये ना आ जाए मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, याद आता ना, मैं कहने से आज जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, वो मैं से हो रही, मैं अनुभवी हूं, मैं धनवान हूं, मैं इसको सहयोग देने वाला मददगार हूं, मैं बड़ी पोस्ट वाला हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़े ऊंचे जाति वाला हूं, ये नीचा है। जहां पर ये मैंपन आता है वहां बाबा दूर हो जाता है, इसलिए सदा ध्यान रखना, जब मैं शब्द यूज करो तो मैं तो एक बहुत छोटी सी एक बिंदु ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं बाबा की चुनी हुई आत्मा हूं, ये स्मृति आ जाए, मैं कहते हैं देह अभिमान का मैंपन समाप्त हो जाए, फिर बाबा कहो तो देखो बाबा आपके साथ हाजिर है, देह अभिमान वालों के साथ बाबा नहीं रहता है। और जब मेरा कहो तो कोई भी मेरा लौकिक में संबंध नहीं आता है, कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, मेरा मेरा, बहुत फेरा बना लिया, फंस गए उसके अंदर। अब बाबा कहता है बच्चे जब मेरा बाबा कहा है तो ये सब मेरा उसमें समा जाता है, विस्तार को सार में समा दो, विस्तार में बुद्धि होगी तो वो सार स्वरूप बोल जाएगा। सार स्वरूप क्या है, इस सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का सार क्या है, बीज, अगर बीज नहीं है तो वृक्ष कहां से आएगा, तो हमारा बाबा इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, और जब बीज को हमने पकड़ लिया तो ये वृक्ष अपना हो गया, वृक्ष के डालियों को पकड़ने की अभी जरूरत नहीं रही, सारे कल्प के अंदर तो किसी न किसी डाली को पकड़ के रखा, संगम युग पर सब डालियों को छोड़ दिया, एक बाबा को पकड़ लिया, बीज को पा लिया, सारे सार को समझ गए कि सारी मनुष्य सृष्टि इसी एक बीज की रचना है, जितनी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि झाड़ में बहुत वैरायटी है, कितने हैं विचार करके देखो, एक बार कभी झाड़ के आगे खड़े होकर के देखो उस झाड़ को, कितनी वैरायटी है, कितनी टाल टालियां, उससे भी डालियां निकली हुई हैं अलग अलग, अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ, लेकिन उन सब का बीज एक है, और उसका भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, माना पिताओं का पिता, दादाओं का दादा कौन है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो बीज है, वो तो गॉड फादर है, पिता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जितने धर्म निकले हैं, जहां जहां से डालियां निकली हैं, वो सब एक शाखा से निकली हैं, अलग अल्अलग नहीं निकली। आप देखेंगे ये कल्प वृक्ष के झाड़ में जो हमारे चित्र के अंदर बनाया ना, बहुत वंडरफुल चित्र है, उसको ध्यान से देखो। इब्राहिम आया, उसने इस्लाम धर्म स्थापित किया, लेकिन वो शाखा निकली कहां से? आदि सनातन देवी देवता धर्म से। क्रिश्चियंस, क्राइस्ट आया, उसने क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया, क्राइस्ट कहां से निकला? इब्राहिम से नहीं निकला, इसी आदि सनातन देवी देवता धर्म से। बुद्ध भी ऐसे ही, संन्यास धर्म भी ऐसे। जो भी धर्म आत्माएं आई, वो जन्म नहीं लिया पहले आकर के, वो प्रवेश हुई। कहां प्रवेश हुई? जो इस देवता घराने की आत्मा हिंदू बनी, द्वापर में आकर के हिंदू कहलाने लगी, उसी धर्म में वो आत्मा आई, प्रवेश करके उसने अपना धर्म स्थापन कर दिया। तो उसका सबका पिताओं का पिता कौन? जो आदि सनातन देवी देवता का पिता है, ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए जब बाबा कहते हैं तो बहुत विशालता से, हमारा बाबा है कौन? धर्म पिताओं का भी पिता है, सारी सृष्टि का पिता है। बहुत नॉलेजफुल स्टेज बन जाती है, बहुत नशा चढ़ता है। हम उस बाबा के बच्चे बने हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी पिता है, जो सारी सृष्टि को शक्ति देने वाला है। गुप्त रीति से सब उसी से मांगते हैं, भले बीच में भटक गए, देहधारियों को मानने लगे, लेकिन सबका दाता है ना आपका बाबा, हम सबका बाबा। बाबा शिव बाबा के द्वारा भी शक्ति मिल रही है, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी पूरे वृक्ष को शक्ति मिल, और हम सबको भी बाबा कहता है, बच्चे तुम भी मेरे मददगार हो, इतने बड़े वृक्ष को शक्ति देने के लिए तुम सबका योग चाहिए। तो बाबा को जब हम याद करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो पूरा वृक्ष सामने आ जाता है। जैसे पूरे वृक्ष को शक्ति मिल रही है, उसकी हम सब वंशावली है। हम सबके द्वारा ये सारी वंश निकले हुए, बिरादरियां निकली हैं अलग अलग। तो इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा बाबा है, और जब हम बाबा कहते हैं तो उसी नशे से कहते हैं कि हम उसके हैं जो सबका है, सबका दाता है। इसलिए किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। कोई अगर एक बार एक भिखारी को आया कि मैं रोज राजा के सामने भीख मांगने जाता हूं, बड़े प्यार से हमें देता है, उसको कौन देता है, वो कहां से लाता है, ऐसे विचार करने लगा। तो एक दिन छिप करके गया, दरवाजे के पीछे से झांक करके देख रहा था, तो राजा मंदिर में बैठे हुए भगवान को कहता था, भगवान तुम मुझे इतना दे जो मैं सबको दूं। उसको भिखारी को, अरे ये भी भिखारी है, देता है भले सबको, लेकिन ये भी भिखारी है, ये भी किसी से मांग रहा है। जब ये इससे मांगता है और हमको देता है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं मांग ले, डायरेक्ट क्यों नहीं मांग ले? जब इतना उसको दे रहा है, इतने हजारों भिखारियों को ये बांट रहा है, तो मैं इससे क्यों लूं, मैं भी उससे ले लूं ना जो सबको दे सकूं। तो हम सबको भी बाबा कहता है, बच्चे अभी किसी भी डाल डाली को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी देवी और देवता के आगे झुकने की और मांगने की जरूरत नहीं है, सबका दाता मैं हूं, तुम्हारा बाप। तो जब दिल से मेरा बाबा कहते ना, तो सब खजाने भरपूर हो जाते हैं। जो भी बाबा के पास है, उसके हम सब मालिक बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। और वो नशा रहता है कि देखो हम उस बाबा के बच्चे हैं। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसका पिता बहुत पैसे वाला हो, बहुत बड़ा धनवान हो, करोड़पति हो, और उसका कोई कारण से बेटा बाहर जाकर के किसी से 5-10 रुपए की भीख मांगे, कुछ बोले कि मुझे सहयोग दो, तो पहले लोग उसको देख करके संकल्प चलाएं, पूछेंगे नहीं क्या हुआ, सोचेंगे जरूर कि इसका पिता इतना पैसे वाला, इतना धनवान, और ये 5-10 रुपए के लिए, थोड़े बहुत सहयोग के लिए क्यों इधर उधर भटक रहा है, शायद इसका कनेक्शन ठीक नहीं होगा। नहीं तो बच्चा तो मालिक है ना। अगर हम बच्चे जिसके पिता को हम जिसका पिता शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, उसके बच्चे अगर कहीं भी थोड़ा भी किसी को कहें मुझे शांति दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे प्यार दे दो, तो लोग क्या कहेंगे और बाबा क्या सोचेगा कि मेरे बच्चे जिनको मैंने सारे खजाने दे दिया, जिनको मैंने मास्टर बना दिया, तो मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर प्यार के सागर हो। जो बाबा के टाइटल हैं, जो बाबा के समान हैं, वो हम बच्चों को उसका मास्टर बनाया है। विचार करके देखो, जब हम बाबा शब्द कहते हैं तो सिर्फ बाबा माना बिंदी ज्योति नहीं है, वो सिंधु है, भरपूर है, सब कुछ है उसके पास। और हम बच्चे अगर खाली खाली अनुभव करें, हम कोई चीज के भिखारी हों, हम कोई चीज किसी से मांग रहे हों, तो जरूर ये बात सिद्ध करती है कि हमारा ठीक संबंध नहीं है, कनेक्शन ठीक नहीं है। इसलिए पहला शब्द एक एक शब्द याद रखो, अगर एक व्रतता है, एक नामी है, इकोनॉमी करके चलते हैं, एकांतवासी बन के रहते हैं, तो हम उसके सब खजानों के मालिक हैं। दूसरा शब्द बाबा को एक बहुत अच्छा लगता है, रोज सुनते हो, वो शब्द है सदा। सदा शब्द अंडरलाइन करता है, सदा। आज भी बाबा ने कहा सदा ज्ञान सूर्य के सामने रहो, सदा अचल अडोल रहो, सदा एक रस रहो। कभी ये नहीं कहता कभी रहो कभी नहीं रहो, सदा उमंग उत्साह में रहो। सदा शब्द को बार बार अंडरलाइन करता है, सदा मेरी याद में रहो। ऐसे नहीं दो घंटा याद करो, दो घंटा नहीं याद करो। सदा शब्द को बहुत इस समय अव्यक्त बाबा की मुरलियों में तो इस शब्द को बहुत अंडरलाइन किया गया। तो आप सब इस बात को ध्यान रखो कि बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे सदा एक रस स्थिति में रहें, सदा खुश नसीब रहें, सदा भरपूर रहें। सदा शब्द को अंडरलाइन किया तो खुद नशा चढ़ेगा कि मैं खाली कैसे हो सकता हूं, मेरा बाबा मेरा साथी है। एक सदा शब्द बाबा को बहुत प्रिय है। तीसरा एक शब्द कौन सा है, कहेंगे तो नए नए शब्द लेके आए, एक शब्द, दूसरा सदा शब्द, तीसरा बेहद। बाबा को हदें अच्छी नहीं लगती, कोई हद का एरिया बना के रखे, हद का सेंटर बना के रखे, हद में फंसा हुआ हो, हद को अपना स्थान बना के रखे, तो बाबा कहता है ये हदों में फंसा हुआ है। कभी भी साकार में भी बाबा को कोई कहता था ये मेरा सेंटर है, ये मेरी एरिया है, बाबा को पसंद नहीं आता था, कहता ये हदों में फंसा हुआ है। बाबा को कभी छोटी चीज पसंद नहीं आती, कोई छोटा चित्र बना के लाता ना साकार में, क्या लाया ये बच्चों जैसा खिलौना, बड़े बड़े चित्र बना दो बच्चे, अंधों के आगे आईना, इतना बड़ा चित्र बनाओ जो दूर से ही लोग देख करके उनकी आंख खुल जाए। बाबा को छोटी चीज पसंद नहीं आती थी, हदें पसंद नहीं आई। तो हम सभी भी कभी भी देखें कोई भी हद नहीं बना के रखना, हद की एरिया नहीं, हद का सेंटर नहीं, हद की बहन में फंसे हुए नहीं, सारा हमारा परिवार बेहद का है, हम बेहद बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को बेहद की बुद्धि देता है, विशाल बुद्धि देता है, और बेहद में कहता टिक करके रहो। जब हम बेहद में रहेंगे ना, हदें समाप्त हो जाएंगी, तो किसी भी देह में, देह के संबंधों में, पदार्थों में, दुनिया में अटकेंगे नहीं, अपने आप बाबा में टिक जाएंगे। तो बाबा ऐसी जादू की सड़ी सर्वशक्तिमान है कि हम बाबा को कहें और बाबा हजार भुजाओं के साथ हमारे साथ आ जाए। कोई भी कार्य हो, किसकी याद आती है पहले, आती है सच्चे दिल से बोलना। देखेंगे आप अगर कोई आपके सेंटर पर भी या आपका कोई बहुत नजदीक का बड़ी पोस्ट वाला सहयोगी होगा, अगर कोई काम पड़ेगा, वो भाई होता तो ये काम हो जाता, वो होता तो सहज हो जाता, उसको फोन कर दूं, उसको ये बात बता दूं, वो करवा देगा। पहले संकल्प में ये नहीं आएगा बाबा मेरा सर्वसमर्थ मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिवान है, क्या सोचेंगे वो तो निराकार है ना, वो तो हमारी कहां आवाज सुनेगा, वो तो बहुत ऊंचा रहता है। साकार में तो कोई चाहिए ना। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई छोटी मोटी बात आएगी, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, फट से अपने लौकिक में जो संबंध होंगे, जहां से दोस्ती होगी, जहां से संबंध बने होंगे, फट से उसको फोन घुमाएंगे। पहले नंबर में ये नहीं सोचेंगे कि अरे हमारा संबंध किसके साथ अभी है, जो सबका दाता है, सबकी बुद्धि को फेरने वाला है, उसको मैं एक सेकंड में कहीं हेलो करूं, पहले उसको अपनी प्रॉब्लम बता दूं, हल दे दे, वो किसी द्वारा भी कराए, उसकी मर्जी है, भले उसी संबंधी से कराए, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट उसके साथ जुड़ गया, किसी देहधारी के साथ, मैं गहरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैंने पहले संकल्प में किसी देहधारी को याद कर लिया तो बाबा किनारा कर लेगा। अगर पहले संकल्प में आएगा नहीं, सबको बुद्धि देने वाला, सबको गाइड करने वाला सर्व समर्थ मेरा बाबा है, और दिल से मेरा बाबा निकला, बाबा हाजिर हो जाएगा, और बच्चे से जो बाबा को जहां से कराना है कराएगा, अपने आप कराएगा। करण करावन हार, इस समय संगम पर बाबा है, और उसका अनुभव करके देखो। एक दो बातें आपको मैं सुनाता हूं, कई बार हमारे भाई बहने आजकल कलयुग के वातावरण में कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, झूठे केस में भी फंस जाते हैं, कुछ नहीं होगा, बिजनेस चल रहा है। एक डॉक्टर था, बहुत अच्छा उसका बिजनेस, बहुत अच्छे पेशेंट आते थे, कमाई अच्छी हो रही, बाबा का बहुत ऑनेस्ट बच्चा, कभी भी उसने धोखाधड़ी नहीं किया, बिजनेस के हिसाब से डॉक्टरी नहीं किया, लोगों को ईर्ष्या होने लगी आजू बाजू वालों को, और उसको ऐसा उल्टे केस में फंसा दिया जो जमानती वारंट भी उसको न मिले, वो जेल में चला गया। वो सोचने लगा, मैं बाबा का ईमानदार बच्चा, मैंने कभी ठगी चोरी नहीं की, ये कौन सा मेरा हिसाब किताब आ गया। जेल में कोई उसको जमानत लेने वाला भी नहीं, और बाबा ने इसने देखा, वो बच्चा बहुत प्यार से मुझे याद कर रहा है, बाबा आए हुए थे यहां व्यक्त रूप में, बाबा मुरली चलाते चलाते कहता है, बच्चा है, बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। सभा में मुरली चलते चलते एक पॉइंट चेंज हुई कि ऐसा बाबा ने अचानक कैसे बोला, हो सकता कोई बात होगी। अब वो बात उसी समय उसके स्टूडेंट ने, कोई ने, भाई ने जाके उसको बताई कि मुरली चलते चलते बाबा ने तुमको याद किया है। ये बाबा ने कहा, दिल से कहो मेरा बाबा, बस वो प्यार में खो गया, बाबा मुझे देख रहा है, मुझे मेरी आवाज सुन रहा है, और उसने इतना प्यार से कहा, दिल से बाबा, बाबा आप बैठे हो, मैं निश्चिंत हूं, कोई हिसाब किताब होगा। उस बाबा कहा, और थोड़े दिन के बाद, एक दो दिन के बाद ही ऊपर से डायरेक्शन आ गया कि वो निर्दोष बंद है, उसको छोड़ दो, सदा के लिए मुक्त हो गया, केस ही खत्म हो गया। बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा को दिल से याद किया, तो जिसको टच करना था उसको टच कर दिया बाबा ने। कर सकता है ना कि नहीं कर सकता, ये काम तो किसी से भी करा सकता है। तो इसलिए बाबा ने ऐसा कई प्रयोग हमने देखे हैं, कईयों ने करके देखे हैं, कि जब दिल से बाबा कहते, प्रॉब्लम तो हरेक के आगे आती है, उसमें अगर सच्चे दिल से बाबा निकलता है तो बाबा हाजिर हो जाता है, बाबा उसको मदद कर देता है। कई ऐसे एक्सीडेंटल केस भी होते हैं, अगर अचानक कुछ हो गया और उसे निकले, दिल से बाबा आप हो ना हमारे साथ, जैसे बाबा आकर के ऐसे उसको गोद में उठा लेते हैं, बच जाता है। कई ऐसे केस होते हैं, कईयों को इतनी चोट लग जाती और कईयों की गाड़ी भी पूरी खत्म हो गई, और वो दिल से बाबा कहा है, वो देखो तीनों के तीनों, चारों जो उसमें बैठे सब सेफ है, चोट भी खरोच भी नहीं आई और गाड़ी सारी खत्म। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, जब दिल से बाबा कोई कहता है तो बाबा वो छतरी के रूप में आ जाता है, ऊपर छत्र छाया बन जाता है करके, इसलिए इसको जादू कहते हैं, जादूगर है, एक सेकंड में हाजिर हो जाता है, उसको पहुंचने में कोई समय नहीं लगता है, लेकिन बच्चों के दिल की भावना वहां तक पहुंचती है, सिर्फ ऊपर की आवाज नहीं पहुंचती, ऐसे ऊपर ऊपर से कोई कितना भी कहे बाबा मेरा है। बहुत दिल का प्यार चाहिए, जिगरी प्यार चाहिए, संबंध से बाबा कहना पड़ेगा, बहुत दिल के रिगार्ड से कहना पड़ेगा, कि हमने किसको अपना कहा, जो हजार भुजाओं वाला सर्व समर्थ है, सबसे कराने वाला है, साधारण नहीं है कोई। आजकल क्या बाबा बाबा कह करके हमने उसको साधारण बना दिया। भगवान जिसके नाम से लोग कितना काम कर रहे हैं, जिसके मंदिरों में कैसे घंटों लाइन में खड़े हुए हैं, आप किसी मंदिर में देखो जा करके, चलो शिव बाबा को छोड़ो उसकी रचना, देवी देवताओं के मंदिर में कितनी घंटों की तपस्या के बाद लाइन में खड़े खड़े दो दो चार चार घंटे, और जाते हैं एक सेकंड भी दर्शन नहीं मिलता, धक्के खा करके आ जाते, प्रसन्न हो जाते, लेकिन मूर्ति के आगे से ऐसे क्रॉस हो गए वो प्रसन्न हो जाते कि मेरी थकावट दूर हो गई, मेरी भक्ति का फल मिल गया, मेरा दर्शन हो गया। थोड़े समय के दर्शन के लिए एक भगत इतने घंटे लाइन में खड़ा था और एक सेकंड आया और निकल गया और उस खुश हो गया, बस मैंने दर्शन कर लिया। और हमारा क्या भाग्य है, पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, श्रीमत मिल रही है, उनकी राय पर हम चल रहे हैं, उसको हम बाबा कहते हैं। तो इतना निश्चय और विश्वास के साथ अगर बाबा कहते हैं तो एकदम निश्चिंत स्थिति होनी चाहिए। अगर चिंताएं हैं, अगर चिंतन चलता है व्यर्थ का, कोई भी थोड़ा सा हिसाब आ गया, कोई भी थोड़ा सा पेपर आ गया, कोई भी पुरानी कोई ऐसी कर्म की कहानी निकल आई सामने, तो कई बार बाबा दूर हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा होता है, ज्ञानी लोग ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे होते हैं, बाबा के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, निश्चय टूट जाता है, बाबा मदद करेगा ऐसे समय पर। सचमुच अगर बाबा से पूरी मदद लेनी है तो इसमें कभी भी जरा रिंचक मात्र भी संशय ना आए, संकल्प भी न उठे, नहीं बाबा तो हमारा सदा साथी है, वो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है। तो जब उस निश्चय और नशे से कहते हैं, अगर मान लो कोई माया ने कुछ करा भी दिया, कोई ऐसे कर्म हो भी गए, कोई भूल भी हो गई, तो भी बाबा क्षमा का सागर है, रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, वो हमारा है। सिर्फ जरूरत है सच्चे दिल की, सच्चे दिल पर साहेब राजी, ऐसे नहीं राजी होता। अगर अंदर एक है बाहर दूसरा है, कथनी और करनी में समान नहीं है, अंदर की सच्चाई नहीं है, ऊपर ऊपर से दिखावा है, तो बाबा को पसंद नहीं आता है। पसंद ही नहीं बाबा करता है तो सुनेगा कैसे, सुनता तो वो है जो हमको पसंद करता, हमारे दिल की बात कौन स्वीकार करेगा जो हमको पसंद करेगा। तो पहले हम ये देखें कि हम बाबा को पसंद आते हैं, हम बाबा के बच्चे तो बन गए, इतने बाबा के आज्ञाकारी हैं, इतने सपूत हैं, इतने सच्चे हैं, इतने ईमानदार हैं, बाबा की मत श्रीमत में कभी अपनी मन मत तो ऐड नहीं करते हैं, बाबा तो कहता है लेकिन ऐसे डैश 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 ऐसे लेकिन तो नहीं आता है। मुरली सुनते हैं सोचते हैं बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है, शायद मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, अपने में भी अगर शक और शंका पैदा हो गई। कई बार बाबा कहता ना रहम दिल बच्चे, कभी कभी रहम करते करते बहम कर लेते अपने आप। बहम और रहम ये दो बहुत बड़ी बीमारियां हैं। अगर जरा भी बहम आ गया, बहम समझते हैं ना अनुमान, शक, शंका, संशय, ये सब बहम के शब्द हैं। अगर जरा भी आ गया, पता नहीं बाबा तो इतनी ऊंची ऊंची बातें करता है, लक्षण तो कोई दिखाई नहीं देते मैं देवता बनूंगा, मान लो संशय आ गया, कोई संकल्प चलने लगे वहम के, तो बाबा क्या करेगा, बना पाएगा? इसलिए कभी भी ऐसे कोई साधारण संकल्प आए, उस संकल्प को उसी समय फुल स्टॉप लगाओ, समाप्त करो, ये संकल्प माया दे रही है, ये हमारा संकल्प बाबा का संकल्प नहीं है। बाबा ने मुझे देवी देवता बनाने के लिए, मुझे सतो प्रधान बनाने के लिए अपना बच्चा बनाया है, वो मुझे पढ़ा रहा है, वो उसने मुझे ठेका लिया है सुधारने का, वो सुधारेगा। है कोई कमजोर संकल्प, संस्कार, कोई पुरानी आदत, कोई भी है भी, तो उससे युद्ध करते करते निराश और दिल से कष्ट नहीं हो जाओ, छोटे दिल नहीं करो, बाबा बैठा है कर लेगा, सब कुछ कराने वाला वो है, हम सिर्फ अपने आप को सरेंडर कर दें बस। देखो आपको कैसे सुधार देगा, बना के छोड़ेगा। दूसरे थोड़ी बनने वाले आने वाले हैं, हमको ही बनाने वाला है। और जब हम ही बनने वाले हैं तो हम इतना निराश क्यों हो जाएं? ये संस्कार तो बड़ा कड़ा है, बार बार इमर्ज हो जाता है, बार बार आ जाता है गुस्सा मुझे, बार बार ही आसक्तियां आ जाती हैं। बाबा कहते बच्चे निराश नहीं हो जाओ, प्रयास करो, अभ्यास करो, कुछ सेकंड भी स्थिर से डिटैच होने का अभ्यास करो, अपने निजी गुणों का आवाहन करो, ये मेरे निजी गुण हैं, अवगुण आ गए बीच में लेकिन मेरे निजी गुण तो आत्मा के ये हैं, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, सुख है, ये हमारे निजी गुण हैं आत्मा के। उन गुणों का चिंतन करते करते उसका स्वरूप बन जाओ। जब उस स्वरूप में स्थित हो गए फिर कहेंगे बाबा, तो बाबा कहे हाँ जी मैं हाजिर हूं। लेकिन देव मान वाले अवगुणों को चिंतन करते करते मैं तो कमजोर हूं, मेरे अंदर तो ये संस्कार है, मेरे अंदर ये है, ऐसे कई सोच सोच करके अपने आप को निराश कर लेते, उदास कर लेते, बाबा को अपना ऐसा नहीं समझते कि वो तो हमारे साथ साथ रहता है, हम उसको जुदा क्यों करते। भगवान के काम के लिए हमको उसने अपनी स्थापना के विशेष कार्य के लिए हमको चुन करके निकाला है, भगवान ने निकाला है, हमने उसको इतना नहीं ढूंढा, वो तो भक्ति के अंदर ढूंढा, वो बिना एड्रेस के ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ करके सेलेक्ट करके अपने इस ग्रुप में लेके आया, देवता बनने वाले ग्रुप में ले आया। जब उसने मुझे सेलेक्ट किया तो वही मुझे बनाएगा। इसलिए कोई कमजोर संस्कार, कोई कमजोरी का चिंतन न करके मैं बाबा जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं, बहुत सच्चा हूं, ईमानदार हूं, जो है सच्चाई से बाबा के आगे वर्णन करो, बाबा को सुना के आ जाओ और संकल्प करो कि ये जो कमी कमजोरी है बाबा मैं आपको अर्पित करता हूं, मैं इसको आने नहीं दूंगा, दोबारा नहीं आएगी। अगर दोबारा रिपीट हो तो फिर संकल्प कर दो कि बाबा मैंने तो आपके आगे समर्पित कर दी, फिर मुझे क्यों आई, ये मेरी चीज नहीं है। इसलिए बाबा ने उस दिन बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि बच्चे ये मध्यकाल के रावण के संस्कारों को तुम मेरा कहते हो, ये तो रावण के संस्कार है, ये तो माया की देन है, तुम्हारे ये संस्कार नहीं है, तुम्हारे निजी संस्कार तो पवित्रता के हैं, शांति के हैं, सुख के हैं। अनादि संस्कार और आदि संस्कारों को याद करो। तो जब संगम युग पर हम अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करते हैं तब दिल से निकलता है बाबा आपने मुझे ऐसा बनाया था, अब मैं फिर बन जाऊंगा। तो बाबा शब्द इतना श्रेष्ठ किला बन जाता है जो माया से सुरक्षित कर देता है, सेफ्टी का किला है। इसलिए कभी भी बाबा शब्द यूज करो तो बाबा को ऐसे अनुभव करो जैसे उसकी सारी शक्तियां मेरे चारों तरफ आ गई। बाबा ऐसा साधारण शब्द नहीं है जो हम कहें बाबा बाबा बाबा, लेकिन वो सारी शक्तियों सहित अपने इस शब्द के साथ मेरे साथ हाजिरा हजूर हो जाता है, मेरे आंखों के सामने आ जाता है, सर्व समर्थ होने के कारण कहता बच्चे तुम भूल जा अपने आप को, मैं बैठा हूं। जब करण करावनहार बाबा है, इतनी प्रभु लीला आप देख रहे हो, चल रही ना प्रभु लीला, इतनी सारी, इतना बड़ा स्थापना का कार्य, इतने हजारों बच्चे, इतना बड़ा विस्तार सेवाओं का, और साकार में तो कोई है ही नहीं। जो हमारे दादियां बड़े बुजुर्ग वो सब पूर्वज बनकर के एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, और बाबा का कार्य दिन प्रतिदिन इतना विस्तार को पाता जा रहा है, बढ़ रहा है, हजारों बच्चे। अभी कल मुझे याद आया जब मधुबन में योग शिविर शुरू हुआ था, कि शुरुआत जब योग शिविर की हुई तो यहां पर एक भवन है, योग भवन, जो विज्ञान भवन के पास में है, वो बिल्डिंग बनी थी पहले पहले, मैं समझता हूं 76 या 77 में बनी, और वो बिल्डिंग में 8 प्रोफेसर आए पहले पहले योग शिविर करने, ये गुजरात से आए योग शिविर करने के लिए, प्रोफेसर अभी भी ज्ञान में वो चलते हैं, पहले पहले जो योग शिविर शुरू हुआ। और वो जब आए तो मधुबन में इतनी खुशी की लहर छा गई कि अच्छे अच्छे वीआईपी शिविर करने आए, 8 लोग आए थे, और उसके लिए दीदी दादी ने हम लोगों का इतना अच्छा क्लास लिया, पहले देखो इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं घर में, कहीं आवाज नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छी तरह से पालना देनी है, उनको खाना देना समय पर ध्यान रखना, बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी थी। 8 लोग थे उस समय, और कल मैं देख रहा था 8,000 लोग शिविर में आए हुए, इतनी भीड़। अब कोई कहने वाला नहीं, उस समय तो हमको 8 के लिए इतने डायरेक्शन मिले थे, अभी तो कोई किसी को बोल नहीं रहा है कौन क्या करना है। और इतने खुश होके जाते हैं, आप उनसे मिलो देखो उनकी भावनाएं, अरे हमको तो बहुत प्राप्तियां हुई, बहुत अच्छा लगा, कौन करा रहा है सब, बैठा है ना वो, चला गया कहीं। तो इतना सब विस्तार किसने किया, करण करावनहार बाबा है, करा रहा है। और इतने अच्छे अच्छे अनुभव लेके लोग जाते हैं, सदा के लिए सहयोगी बन जाते हैं, सदा के लिए बाबा बाबा कहना सीख जाते हैं, भगवान का कार्य ऐसे कोई नहीं सहज मानता है। लेकिन जब इतनी विशालता, इतना अच्छा कार्य देखता है, इतना निर्विघ्न देखता है, कैसे स्मूथ चलता है, 4 बजे से लेके गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब टाइम टेबल फिक्स है। एक मेरे को आज मिला, हिमाचल का था, सवेरे सवेरे आ गया मुरली के बाद, कहता है भाई जी मुझे बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हुए यहां पर, इतनी सुंदर क्लासेज की अरेंजमेंट थी, जैसे कॉलेज और प्रोफेसर में पढ़ाया जाता है ना, एक के बाद एक, उसके बाद उसकी स्टेज, उसके बाद उसकी ऊंचाई, बहुत नंबर वार यूनिवर्सिटी की जैसी क्लासेज हमको मिली। हमने कौन से अरेंज किया सबने, यूनिवर्सिटी हम क्या जाने क्या होती, लेकिन उसको बाबा कितने अच्छे अच्छे अनुभव करा रहा है कि यहां पर यूनिवर्सिटी से भी अच्छी क्लासेज, और कायदे से एक लेसन के बाद दूसरा लेसन, दूसरे के बाद तीसरा, और लास्ट में मेरा क्लास हुआ तो कहता सारा सार पूरे क्लासेज का आपने सुना दिया। ये बाबा करण करावनहार है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बुद्धि को टच करता है, वो बाबा के बच्चे कैसे क्रिएट करता है, बनाता है, उनकी बुद्धि में बैठ जाता है आकर के, उनको अच्छे अनुभव करा देता है। तो सब बाबा की लीला चल रही है, इसलिए हम कभी भी ये न कहें मैं करता हूं। कभी भूल चूक से भी कोई कह देता है कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो कौन करता, तो बाबा को ये शब्द पसंद नहीं आता, कहता इसका मैं जो है ना इसको मैला बना देता है। कभी भी कोई सेवा हो, तन से मन से धन से सहयोग करो, बाबा के कार्य में उंगली दो, लेकिन कभी वर्णन नहीं करना मैंने किया है, नहीं तो बाबा के खाते से वो नील हो जाएगा, उसको क्रास लग जाएगा, किसने तो जो किया वर्णन करके खत्म कर दिया, बाबा आपने कराया, मैंने क्या किया। इतना गुप्त रीति से जो बाबा के कार्य में मददगार है, बाबा उनके लिए जादू की छड़ी है, सबके लिए नहीं है, लेकिन गुप्त रीति से बस बाबा कह करके बाबा को अपना बना लिया। तो आप सबने बाबा को अपना बनाया है ना, ऐसे बनाना। बाबा बहुत भोलानाथ है, आशुतोष है, बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाला है। कहते हैं इतना भोला है, इतना भोला है, जब वो गज जो है ना हाथी तालाब में गया तो उसको मगर ने पकड़ लिया, तो मगर ने उसको खींचना जब पैर से शुरू कर दिया तो उसके मुंह में पानी था, तो अपनी सूंड उठा करके चिल्लाने लगा, पानी से ऊपर से चढ़ाने लगा, भोलानाथ समझ रहे हैं ऊपर से कि ये गज मेरी पूजा कर रहा है, इतना भोला है, ऊपर से सूंड से पानी डाल रहा है, वो तो चिल्ला रहा था, उसके तो टांग खींच रही थी, लेकिन दुख में भगवान ने सोचा है कि ये गज भी मुझे पुकार रहा है, चलो रक्षा करते। भक्ति के अंदर ऐसी ऐसी कहावत है कि भगवान जो है, शिव भोलानाथ जो है, इतना आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है, भूल से भी कोई ने उस पर फूल चढ़ा दिया तो प्रसन्न होके कहता मांग ले बच्चे जो चाहिए, वो हमारा बाबा है, हम मांगने वाले नहीं उसे, लेकिन हमारा अधिकार है। तो आशुतोष है, भोलानाथ है, लेकिन उन बच्चों पर संतुष्ट होता है जो बहुत सच्चे और भोले हैं, बुद्धि चलाने वालों का नहीं हो, दिल वालों का दिल वाला है, दिल का सौदा है, जो दिल से बाबा बाबा कहते हैं, दिल से अंदर से उनके लिए बाबा हाजिर हो जाता है। इसलिए बहुत ये संभालना है, कहीं पर भी दिमाग को इतना यूज नहीं कर लो जो दिल दूर हो जाए। कई दिमाग वाले होते हैं ना, बुद्धि वाले, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी पोस्ट पर होंगे, यूज करते रहेंगे, बाबा आता है या क्या होता है? पहले तो बाबा ऐसे मुरली चलाता था, अभी ऐसे चलाता है, ये करता है। दिमाग क्यों चला रहे हो? बाबा की लीला है, बाबा को जो करना है कर रहा है, जैसे करना वैसे कर रहा है। आप उसके अनुभव करो ना, अनुभव तो करा रहा है, प्यार दे रहा है, सागर की तरह उछल रहा है, सबको ज्ञान डांस करा रहा है। बाबा की वो डांस का अनुभव करो, वो प्यार का अनुभव करो। प्रश्न करने वाले तो दिमाग वाले बड़ी बातें सोचते रहते, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इस भाई दादी की आवाज में बाबा क्यों बोल गया, पता नहीं बाबा या दादी ही बोल के चली गई। अरे बुद्धि क्यों चला रहे हो? हमारे को तो कभी बुद्धि नहीं चलती, दादियों के तो कभी बुद्धि नहीं चलती। ठीक है, बाबा का जो पाठ है जैसे बजाना चाहे, आया तो बच्चों को भाषणा तो दी, इतनी सभा को रिफ्रेश तो किया। अब आवाज में कुछ भी कारण हो सकता है, दादी के शरीर का कुछ भी, बड़ी एज में कुछ भी हो सकता है। कभी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न नहीं करो, बहुत सच्चे दिल से बाबा का जो पाठ चल रहा है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, बहुत भावना से, बहुत प्यार से, बाबा आपने मुझे बनाया, मेरी जीवन बनी है ना। ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या? कोई आपको कहे आपको क्या प्रमाण है कि आपको भगवान मिला है? आप कहेंगे हमको तो निश्चय है, कैसे मानेगा वो? हमारी जीवन को देख करके मानेगा। अगर सचमुच मुझे भगवान मिला है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो हम इतने निश्चिंत हैं, इतने निर्भय हैं, इतने निर्वैर हैं, कोई से वैर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा साथी है, वो हमारे साथ रहता है। फिर क्यों चिंता कर रहे हैं, फिर क्यों चिंतन कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये न हो जाए, वो न हो जाए। जिसका रक्षक, रखवाला, जिसका गाइड वो स्वयं है, वो हमारा नुकसान होने देगा? कहते हैं एक प्लेन में एक बार पायलट जो था ना, वो चला रहा था, तो आगे पहाड़ बादलों के आ जाते हैं, तो कहता बेल्ट बांधो, और प्लेन हिलने लगा ऐसे ऐसे, तो जितने यात्री बैठे थे वो सब चिल्लाने लगे, आवाज करने लगे, पता नहीं अभी क्या होगा, प्लेन गिर न जाए। बच्चा एक खेल रहा था ऐसे, उसको कुछ नहीं हो रहा था, छोटा बच्चा बैठा था, सारे सारे चिल्ला रहे हो, बच्चा मौज से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो सबने कहा तेरे को डर नहीं लगता है? तो वो बड़े प्यार से कहता है मेरे को डर क्यों लगेगा, मेरा बाप ही तो पायलट है, वो मुझे मरने थोड़ी देगा, मेरा बाप ही पायलट है। अब जिसका बाप ही पायलट है, जिसका बाप ही चलाने वाला है, भले विनाश होने दो, भले कुछ भी हो, हमारा बाबा कौन है? जब वही पायलट है, वही सब कुछ करण करावनहार है, तो हम बच्चे डरेंगे क्यों? जो होगा अच्छा होगा, वो अपने बच्चे की अपने आप रक्षा करेगा, वो थोड़ी मरने देगा। लेकिन सोचने लगते हैं ये तो सब कुछ न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। तो बाबा प्यार से बाबा कहो ना, उसको पहचान से कहो ना है कौन, निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, एकदम एक रस स्थिति बन जाएगी, हलचल में नहीं आएंगे। कैसे भी माया के पेपर आ जाए, कैसे भी विघ्न आ जाए, धन का भी दिवाला निकल जाए, बाबा के ऊपर नहीं पेपर आए क्या? इतना बड़ा पैसे वाला साहूकार सरेंडर हुआ बाबा है, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, 14 साल तक तो बाबा ने इतना प्यार से सबकी पालना की, सब ने प्यार से खाया पिया, रहे मौज किया। कहते थे वो मंडली में ना पिस्ता बादाम खाते हैं, लेकिन जब आबू में आए तो यहां पर सबसे बड़ा पेपर ले लिया, एक भी पैसा नहीं भंडारे में, 400 लोग खाने वाले, जो लाए थे वो खा के खत्म कर दिया। चारा ना भी ना हो, 400 लोग खाने वाले हो, चिंता नहीं होगी माँ बाप को? जो थोड़े कच्चे थे ना, थोड़े से, जिनको निश्चय नहीं था कि इसका रखवाला, इसका रक्षक तो वो है, उनकी बुद्धि में संकल्प चलने लगे कि मैं तो कमा सकता हूं, मैं जाऊं। और बाबा कहे बच्चे विनाशी धन के पीछे तुम भागोगे क्या? विनाशी धन तो छोड़ के आ गए, हमें नहीं सब छोड़ दिया, लेकिन जिनको थोड़ा भी संशय था वो गए और माया के बन गए। इसलिए बाबा कहता ना, माया अजगर की तरह मुंह खोल के बैठी है, तुम थोड़ा भी अगर लूज हो गए तो माया खा जाएगी। तो जो गए वो तो दुनिया में चले गए, लेकिन जो पक्के थे, जहां से जो खिलाएगा, जैसे रखेगा, जिस हालत में रखेगा, मैं तो तेरी हूं, तेरा हूं। बाबा ने एक दिन भी भूखा नहीं सोने दिया। 1 बजे भोजन की बेल बजनी है और 10 बजे मनी ऑर्डर या कोई पोस्ट में पैसा आ जाता था, भोजन बन जाता था टाइम पर, बेल बज जाती थी, बच्चों को पता ही नहीं चलने देता था कि भंडारे में कुछ नहीं है। और बाबा ने इतना परीक्षा लेने के बाद कहा, अरे बच्चे तुमको तो मैंने अविनाशी धन दिया है, ज्ञान रतन दिए, ज्ञान धन है तुम्हारे पास, जाओ बांटो इसको, ये धन बांटोगे तो धन अपने आप आ जाएगा। अगर वो परीक्षा बाबा नहीं लेता ना तो आज हम नहीं होते। ये लोग ज्ञान देने के लिए निकलते ही नहीं, बाबा के साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। अरे सतयुग कैसे बनता, इतनी बड़ी रचना कैसे रचता? तो बाबा अगर कोई परीक्षा लेता भी है, कोई बातें आती भी हैं, तो हिल नहीं जाओ तुरंत, ऐसा क्यों हो गया, हम तो बाबा के बने थे, हमारा क्यों ऐसा हो गया। कोई पेपर आया है, परीक्षा आई है, कोई कारण होगा, उसमें भी कल्याण है। हमेशा बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, मुझ आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। एक पक्की लाइन खींच करके रखो, कोई भी परीक्षा आएगी उसमें कोई ना कोई रास्ता मेरे कल्याण का छिपा हुआ होगा। और मैं आज तक देख रहा हूं, जो कोई दिखाई देता है कि इसकी ये बात कैसे अकल्याण की दिखाई देती है, वो थोड़े समय के बाद वो पर्दा हटता है, लगता है तो बहुत बड़ा कल्याण था इसमें। तो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाबा है, कल्याणकारी हम उसके बच्चे हैं। कोई भी छोटी मोटी बातें अगर आ भी जाएं, परिवार से आ जाएं, समाज से आ जाएं, प्रकृति से आ जाएं, कभी डरना और घबराना नहीं, वो साथी साथ है, वो कल्याण का रास्ता निकाल देगा। लेकिन बहुत दिल का सौदा रखना, बाबा मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसे दिल वाला को साथी बना करके हर संबंध से बाबा को प्यार से बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मदद कर देगा, कराता है। बहुतों को मदद के अनुभव हैं और हम भी वो करेंगे तो संबंध अटूट रहेगा, योग सहज हो जाएगा। योग लगाने की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं हम बाबा के योगी बच्चे, मेहनत क्यों करें। सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी, हो सकता है ऐसा कि 2 घंटे वाले, 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले। अभी बाबा को ये शब्द पसंद नहीं आते, कहता है तुम 8 घंटा अगर मुझे याद करते हो, बाकी किसको याद करते हो, 16 घंटा किसके पास जाते हो, सदा चाहिए ना, निरंतर। लेकिन सदा तो तभी हो सकता है जब सब संबंध बाबा से जुड़े हुए हों, हर संबंध में बाबा ही याद आए, कोई दूसरा देहधारी याद ना आए, तो सदा याद हो जाएगी। तो हम सब सदा के योगी, स्वतः योगी बन करके यहां से जाएंगे, इस भट्टी से संकल्प करके जाना कि हम सदा योगी, स्वतः योगी, सहज योगी, चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, बस, ठीक है। तो अभी हम योग करें, 1 घंटे का करेंगे तपस्या। अभी हम 3 स्टेप में योग करेंगे। प्यारे बाबा को सबसे पहले ज्ञान सूर्य रूप में देखेंगे, विधि पूर्वक बाबा के पास चलना है। हरेक अपने अपने भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए सितारे को अनुभव करो, कितना चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य आत्मा, लाइट माइट का पुंज, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। चिंतन करते करते स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर अपने दिव्य बुद्धि के विमान से मन को बाबा के पास ले चलो। सीधा ही अभी हम सब पहले अपने मूल वतन की यात्रा करेंगे। बहुत गहरी साइलेंस, बहुत गहरे शांति के सागर में समाने का अनुभव। सागर में समा जाओ और बाहर आओ तो ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट कुछ मिनटों के लिए सभी देह से डिटैच होकर सब संकल्पों में एक संकल्प करके स्थिर होकर मैं एक लाइट माइट चैतन्य दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान अपने बुद्धि के विमान से अपने मूल वतन का उस शांति देश का गहरा अनुभव कर रही हूं। शांति सागर बाप ज्ञान सूर्य के रूप में मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। मैं उनकी दिव्य किरणों के नीचे हूं। सब शक्तियां मेरे अंदर समा रही हैं। इसका अनुभव करो। अभी हम सब अपने सूक्ष्म वतन में उस लाइट के वतन में फरिश्तों की दुनिया में सैर करेंगे। हर एक अपने सामने एक दृश्य इमर्ज करो। एक बहुत सुंदर चमकीली लाइट की पहाड़ी है और उस लाइट की पहाड़ी पर बाप दादा ब्रह्मा बाबा का वो लाइट का शरीर उसमें शिव बाबा चमक रहा है। बहुत मीठी दृष्टि और मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों बाहें खोल करके आओ बच्चे इस वतन का अनुभव करो। इस आवाज को सुनते हुए बाबा के प्यार में उनकी बाहों में समाने का अनुभव करो। फिर वतन से ही बाबा के साथ खड़े होकर सारे ग्लोब को लाइट दो। सूक्ष्म वतन से बहुत अच्छी सेवा फरिश्ते रूप में हम कर सकते हैं। तो सभी अपना लाइट का शरीर इमर्ज करो। मैं एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा मेरी चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल है प्रकाश का शरीर है और उस प्रकाश के शरीर से उस प्रकाश के वतन में चमकीले वतन में फरिश्तों की दुनिया में बाबा की आवाज सुनते हुए बाबा के प्यार में समा गई हूं और बाबा मुझे अपनी दृष्टि से पवित्र किरणों से शक्तिशाली बनाकर विश्व कल्याण की सेवा के लिए फरिश्ता ड्रेस पहनाकर लाइट और माइट से संपन्न बनाकर सबको सकाश दिला रहे हैं। तो ऐसा व्यक्त वतन का अनुभव करते हुए पूरे विश्व की आत्माओं को शक्ति और शांति का दान दो। हम सब देवकुल की महान आत्माएं परमात्म छत्र छाया के नीचे इस सुख और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो। भक्ति काल में एक एक इष्ट देव इष्ट देवी के आगे एक एक मूर्ति के आगे कितने भक्तों की लाइन लगी है। वो जड़ मूर्तियां मुझ चैतन्य की यादगार है। बाबा ने संगम पर हम सबको इतना भरपूर किया, इतना संपन्न किया, इतना पवित्र और पूज्य बनाया। जो द्वापर से भक्तों की सब मनोकामनाएं मुझ आत्मा से पूर्ण होती हैं, मैं ऐसे इष्ट देव, इष्ट देवी, कुल देव और कुल देवता हूं। कुल देवी बन करके बैठ जाओ, भक्तों की आवाज सुनो और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। बहुत संपन्न स्टेज में बैठकर भक्तों की लाइन आ रही है, दृष्टि से शक्ति लेकर जा रही है। ऐसी संपन्न स्वरूप की स्थिति का अनुभव मेरे द्वारा अनेकों आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। बाबा आपने मुझे इतना संगम पर भरपूर किया है, कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। भगवान ने मुझे पालकर अपना बनाकर सर्वशक्तियों और वरदानों से भरपूर किया है। बहुत ऊंचे सम्मान में बैठो और अपने पवित्र स्वरूप से, पूज्य स्वरूप से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो।